वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
तीसरे अध्याय में कर्म योग की चर्चा चल रही है। तो कर्म योग को अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा है कि कर्म योग को हम दो स्तर पर देख सकते हैं। एक तो है कर्म योग ज्ञान के पूर्व, इसका क्या प्रयोजन है कर्म योग का, और कर्म योग का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में क्या प्रयोजन है। भगवान ने दो स्तर पर हमें बताया है। पहले भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मतम कर्म ज्यावी या कर्म न, नियतम कुरु कर्म, अपने कर्म जो है आप नित्य करते रहो, अकर्म से कर्म करना अच्छा है, आलसी बैठे रहने से कर्म करना अच्छा है, अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। फिर उन्होंने कहा कैसे करो, यज्ञार्थात कर्मनो अन्यत्र लोकोयम कर्मंदना, अगर आप कर्म ईश्वर की प्रीति के लिए नहीं करते हो तो वो कर्म आपको बांधता है। कर्म बांधता है मीन्स वो वासना बन जाती है, वो वासना बन जाती है मतलब आप जन्म और मरण के चक्र में पड़ जाते हो, इसलिए हमको कर्म करना चाहिए, कर्म योग नहीं। क्या आप सावधान हो जाओ, आपको कर्म योग करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म करने से क्या होगा, बंधन में पड़े रहेंगे हम, और ये बंधन केवल जो है आप मनुष्य रूप के अंदर ही काट सकते हो, अन्य किसी शरीर में नहीं कटेगा। तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन है। फिर और भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकल किल विषय, किल विषय मतलब सारे पाप। जो आदमी यज्ञ शिष्ट को लेता है, यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ करने के बाद में जो प्रसाद मिला उसको अगर वो बांट के खाता है तो उसको यज्ञ शिष्ट कहते हैं। तो अगर आप यज्ञ शिष्ट लो, जो प्रसाद आपको मिला है, तो उससे बोलते हैं आपके सारे बंधन सारे पाप खत्म हो जाते हैं। दूसरा कोई उपाय है क्या? नहीं, और कोई उपाय नहीं है, इसलिए आपको कर्मयोग करना है। क्या है कर्मयोग का मेन थीम, क्या है, क्या होगा उसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करेंगे तो क्या लाभ, क्या है लाभ बताना होगा, क्या लाभ है, नहीं तो क्यों करेंगे आप, वो तो आपने स्टैंडर्ड कैसे कम होगी बताओ ना, अटैचमेंट नहीं होगा, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जब आप कर्म करोगे तो आप अपने आप से पूछोगे कि मैं झूठ बोलने जा रहा हूं, आज सत्संग में नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो बोले बर्फ गिरी थी इस वास्ते नहीं आया। अब बताओ आप जब झूठ बोलोगे तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी, क्या वो कहेगी कि आप सही काम कर रहे हो?
नहीं।
भगवान नहीं प्रसन्न होंगे आप झूठ बोलोगे तो। या मैं अपनी कामना पूर्ण करने के लिए दूसरों को हार्म कर रहा हूं, हर्ट कर रहा हूं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हूं, दूसरों को तकलीफ देता हूं, भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। ये काम है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। अब बताओ आपका जीवन कैसा हो गया? आप कोई गलत काम जीवन में नहीं कर पाओगे। दूसरा, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो केवल अपने लिए करता है उसको भगवान ने चोर कहा है। सारी दुनिया, सारी प्रकृति दूसरों के लिए कर्म करती है, केवल इंसान को जो है कर्म की स्वतंत्रता दी गई है और इंसान जो है उसको मिसयूज करता है। तो साधक के लिए ज्ञान के पूर्व जो कर्म योग करते हैं उसको हम साधक कहेंगे। साधक के लिए कर्म क्या होता है? मन की शुद्धि करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। हमने कई बार कहा है केवल दो ही स्टेप हैं ज्ञान में। पहला स्टेप मन की शुद्धता करना, मन हमारा अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है। और दूसरा स्टेप, मन शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान होगा। तो साधक क्यों करता है कर्मयोग? मन की शुद्धता के लिए। उसके बाद ज्ञान हो गया, ज्ञानी भी कर्मयोग करता है। वो क्यों करता है?
अपनी इच्छा से
बोला। क्यों करता है?
अपनी इच्छा से बोला है ना।
अपनी इच्छा से करता है।
इन्होंने बोला लोक सेवा।
हमने देखा कर्मन नैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम अवे अपि समपश्यन् कर्तुम अर्हसि। ज्ञान के बाद भी कर्म योग करते हैं। एग्जाम्पल का किसका दिया? जनक का दिया। देखो जनक राजा भी थे, ज्ञानी भी थे, फिर भी उन्होंने राजपाट छोड़ के जंगल में नहीं चले गए, अपना कर्म करते रहे, कर्म योग करते रहे, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहे। वो कभी उसके पैलेस या किंगडम से वो अटैच नहीं थे। और ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी है ना, कौन सी? उनके महल में आग लग गई, सुना आप लोगों ने? एक बार एक ब्रह्मचारी गया, उसके गुरु ने कहा कैसे रहते हैं ज्ञानी लोग, जाओ वहां देखो। तो गया, जनक महाराज ने बड़ा अभिनंदन किया, बोले हाँ ब्रह्मचारी तुम कोर्स वोर्स करके आए हो, चलो यहां आओ। तो एक दिन जो है वो लोग प्रवचन सुनने के लिए दोनों गए, राजा भी गया ब्रह्मचारी भी गया। तो वहां आश्रम में जाके जो है राजा का एक सिपाही आके राजा के कान में कहता है कि आपके महल में आग लग गई है। राजा चुपचाप बैठा रहा, प्रवचन चल रहा था। तो कुछ लोग जो है उठ के चले गए, जिन्होंने ओवर हियर किया, महल में आग लग गई, ब्रह्मचारी भी उठ के चला गया। फिर जाके वहां से उसकी लंगोटी वहां सूख रही थी, वो लंगोटी लेने गया वहां, फिर वापस आया, दूसरे लोग भी वापस आए। और इस बीच में वो सिपाही जो खड़ा है कि सब लोग उठ गए, कि कहीं राजा ने सुना नहीं, दूसरों ने सब ओवर हियर करके सब चले गए, संभवतः राजा ने नहीं सुना है। वो फिर जाके बोलता है उसको कि आपके महल में आग लग गई है। तो राजा ने उसको बहुत उसको गुस्सा किया, बोले तुम क्या सोचते हो बहरा हूं? मैंने पहले बार ही सुन लिया था, मगर मैं इस उपदेश को छोड़ के कैसे छोड़ के जाऊं? देखो इसकी कितनी वैल्यू है। राजा जनक समझते हैं उसकी वैल्यू कि मेरा पैलेस जहन्नम में जाए। एक जगह तो यहां तक लिखा है कि अगर शीस कटे अगर ज्ञान मिले तो सस्ता जान। शीस कटे मतलब, अरे तो ग्रॉस बॉडी मरने वाली है, मरने के पहले अगर कोई ज्ञान मिल जाए फिर कोई काट दे, काट दो, हम तो हो गए ना, हमको ज्ञान मिल गया, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ज्ञानी लोग जो है आनंद के लिए करते हैं, दूसरा लोक संग्रह, लोक संग्रह का माने हमने बताया था, लोक संग्रह मतलब क्या होता है? आप लोग का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। लोक संग्रह का हमने बताया था, संग्रह का मतलब ये नहीं होता लोगों को इकट्ठा करना, वो तो पॉलिटिशियन भी करते हैं।
सेवा,
लोक संग्रह का मतलब होता है सब लोग जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाना लोक संग्रह है। ये लोक संग्रह आपका वर्ड आया है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ज्ञानी क्या क्यों कर्म योग करता है? ज्ञानी कर्म योग इसलिए करता है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए। क्या सही रास्ता है? सारे लोग कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी उसको कर्मयोग करना दिखाता है कि आप लोग कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, यही तो ज्ञानी कहता रहता है। हम भी करते हैं, आप भी करो। देखो ज्ञानी जब करता है ना तो वो सेवा के भाव से करता है, उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उसको, वो नाम के लिए भी नहीं करता है। हाँ, दूसरों को रास्ता दिखाना इस वास्ते वो करता है, मगर वो जिस स्थान पर खड़ा है वो चाहता है कि उस स्थान पर सब आ जाएं, हम सुखी हैं इस तरफ में, उधर के लोग सब जो कर्म कर रहे हैं वो सब दुखी हैं, कर्म योग करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो उसकी इच्छा ऐसी होती है कि सारे के सारे लोग, मैं जहां खड़ा हूं वहां पर सब आ जाएं, सबके दुख खत्म हो जाएं, ये उसकी इच्छा है। नहीं तो उसको तो कुछ करने की दरकार नहीं, नहीं बतस्य कृते नार्थ, कुछ नहीं चाहिए उसको। भगवान ने कहा एक्सेप्शन टू द रूल, सबको कर्तव्य कर्म करने हैं, मगर एक्सेप्शन टू द रूल एक आदमी है जो ज्ञानी है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। क्यों कर्तव्य कर्म नहीं है? बोला कुछ पाना ही नहीं है हमको, हमको इस दुनिया से लेना नहीं है कुछ, मेरा सुख जो है दुनिया की वस्तुओं और व्यक्तियों के ऊपर निर्भर नहीं है। वो तो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसको सोर्स ऑफ सुख पता है कहां है। ना कृते न ही कश्चन, और नहीं करने से कोई प्रत्यावाय दोष भी नहीं लगता। आप नहीं कर रहे हो, आप कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हो, आप दोष कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को कोई दोष नहीं लगता है, वो तो दूसरों के मार्गदर्शन के लिए करता है। गुरु जी ने एक कविता लिखी है, कृतज्ञता, कृतज्ञता, हमको जिसने ज्ञान दिया है उसके प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन किया है। उसका पहला वर्ष आप सबको मालूम है, समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामयम नमामि चिन्मयम देवम सद्गुरुम ब्रह्मविद परम। समस्त जन कल्याणे, ये देखो वो आ गया ना, ज्ञान होने के बाद में समस्त जन कल्याणे, हमको ये ज्ञान बांटना है सब जगह। निरतम करुणा में, वो करुणा में है, लोगों का दुख देख रहे हैं कि अरे दुखी हैं, एक गलत रास्ते पर भीड़ चली जा रही है, इनको रास्ता दिखाओ। उसके बाद में चौथे वर्ष के अंदर में गुरुजी लिखते हैं, स्वयं कुर्वन कार्यंश्च कर्माणि विविधानि यः असक्त सर्व कार्येषु वर्तते सर्वदा च स। वो कैसे काम करता है? सर्व स्वयं कुर्वन कार्यंश, खुद करता है और लोगों को पथ भी दिखाता है कि देखो ऐसे करना चाहिए आप लोगों को। और कैसे करता है? असक्त सर्व कार्येषु नॉट अटैच्ड। हम लोग कैसे करते हैं? अटैच्ड। ऐसा लोग कहते हैं कि गुरुदेव जब भी किसी भी सेंटर में जाते थे, सिद्धवाड़ी भी जाते थे, तो सिद्धवाड़ी से अपना जब काम हो गया, प्रवचन हो गया, सब खत्म हो गया, जब वहां से निकलते थे उसके बाद वो मुड़ के भी नहीं देखते थे कि सिद्धवाड़ी है भी कि नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, असक्त, अपना काम कर दिया, अब आगे चलो, वहां काम किया असक्त, आगे चलो। इसीलिए भगवान ने उनको कहा है, यहां पर भगवान कहते हैं, जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, जो सेत सर्वकर्माणि, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि विद्वान को भी काम करना चाहिए। जैसे अज्ञानी कर्म के अंदर और कर्म फल के अंदर में अटैच्ड है, आसक्त है, देखो आसक्त असक्त डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंस मालूम है आपको? आसक्त अटैच, असक्त
नॉन अटैच,
आसक्त असक्त, सक्त और आसक्त मीन्स सक्त अटैच, आसक्त मीन्स अटैच, असक्त सक्त मीन्स अटैच, असक्त मीन्स
नॉट
अटैच, सिंपल हिंदी है। तो ज्ञानी भी जो कर्म करता है वो अनासक्त होके करता है। देखो हमारे यहां स्वतंत्रता सेनानी जितने थे ना, वो लोग भी सब कर्म करते थे, ऐसा नहीं कि केवल भाषण देते थे, खुद भी करते थे। जैसे गांधी जी दंडी यात्रा करनी थी, खुद चले, ऐसा नहीं लोग आ गए तुम लोग जाओ वहां पर समुद्र के ऊपर, वहां ऐसा नहीं किया उन्होंने, खुद करते थे। एक टाइम आया था हमारे यहां पर अन्न की जो है काफी कमी हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपील की कि भाई आप लोग जो है एक बेला जो है फास्ट करो, व्रत करो, उपवास करो। तो ये नहीं कि दूसरों के लिए, वो खुद भी नहीं खाते थे। ऐसे ज्ञानी लोग करते हैं। तो अज्ञानी जैसे उत्साह से कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी भी करता है। अज्ञानी अटैच होके करता है, आसक्त सक्त, और ज्ञानी अनासक्त या असक्त होके करता है। और उन्होंने कहा न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, ऐसा भी उन्होंने कहा कि जो लोग कर्म कर रहे हैं ज्ञानी जाके उनको डिस्टर्ब नहीं कर दे, अरे क्या कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो महाबेवकूफ हो, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर उसने आपकी बात मान ली ना, तो ना घर का ना घाट का, ना इधर वो कर पाएगा और उसको जो कर रहा था वो भी उसका छूट जाएगा। तो ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानी का जो लक्ष्य है या जो उसकी साधना है जो कर रहा है उसमें शंका नहीं डाल दे, उसको डिस्टर्ब नहीं कर दे। थोड़ा बहुत उसके अंदर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये कर लो, वो कर लो, क्या कर लो भाई, अच्छा वो आदमी सेवा कर रहा है ना, तो बोलो अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको ये भगवान ने मौका दिया है ना, तो आप जो है भगवान का नाम लेके सेवा करो, देखो कितना थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दे, आप सेवा कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, अब आप ये सोच के करो कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है, अवसर दिया है, तो इसको इस सेवा को भगवान की सेवा मान के करो, बस सेवा करो, भगवान को ले आओ इसमें, इतने में ही काफी फर्क हो जाएगा। न जनयेत बुद्धि भेदम, अगर मान लो कोई अज्ञानी कोई पूजा कर रहा है तो उसमें कुछ मिसिंग लगता है, तो चलो उसको ऐड कर दो, अच्छा भाई आप पूजा करते हो, जप करते हो? ना जप नहीं करता हूं। अच्छा आप जप कर दो, उसकी पूजा को डिस्टर्ब नहीं कर दो, क्या पूजा करते हो, पूजा से कभी कुछ नहीं होगा, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, पूजा से नहीं मिलती, कभी नहीं करना ऐसी गलती, कभी नहीं करना। जो पूजा कर रहा है उसको बोलो अच्छा आप जप करते हो भैया? नहीं नहीं नहीं, तो चलो अब एक ये जप किया करो, एक मंत्र जप ले लो। कोई जप कर रहा है तो उसको ध्यान करते हो क्या? नहीं ध्यान नहीं करते, अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान कर लो। जो ध्यान करता है बोलो सत्संग चिन्ह मिशन जाते हो क्या? एक बार आप 15 मिनट के लिए आ जाओ, पिछले बैक सीट में बैठना, अच्छा नहीं लगे तो चले जाना पीछे से, ऐसे सत्संग उसको ले आओ, थोड़ा सा उसको इंप्रूव कर दो, इस तरीके से आपको उसको मोड़ना है। उसकी साधना में प्रश्न चिन्ह लगा के उसको पथ भ्रष्ट मत कर देना, कभी नहीं करना उसको, क्योंकि अविद्वान का लिमिटेड विजन है, वो क्या देखता है, ये इतना कर्म करेंगे इतने पैसे मिलेंगे, इतना संचय होगा, मल्टीप्लाइड बाय माय रिटायरमेंट एज इतने पैसे हो जाएंगे। करने दो उसको, थोड़ा सा आस्ते 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 उसको करो। मगर विद्वान कैसे अनासक्त रहता है, इस पर भगवान कहते हैं कैसे वो अनासक्त रहता है, विद्वान कैसे अनासक्त होता है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो साइंस अब भगवान बताने जा रहे हैं। उसके पहले शंकराचार्य जी लिखते हैं मूर्ख अज्ञानी मनुष्य। देखो शंकराचार्य जी को मूर्ख जो है बहुत पसंद है, अज्ञानी के आगे विशेषण लगा दिया मूर्ख। मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मों में किस प्रकार आसक्त होता है सो कहते हैं, मूर्ख कैसे आसक्त होता है उसको वो कहते हैं, कैसे भाई आसक्त होता है। तो यहां कहते हैं देखो विद्वान और अविद्वान इसके बारे में भगवान बताते जा रहे हैं। श्लोक नंबर 27।
प्रकृते क्रियमानानि गुणैकर्मणि सर्वशः
अहंकार विमूढात्मा
कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते
प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणै क्रियमानानि सर्वशः मीन्स सारे कर्माणि जितने भी कर्म हैं कौन करता है प्रकृते प्रकृति करती है प्रकृति में क्या है गुण हैं प्रकृति के गुण करते हैं क्रियमानानि तो कर्म कौन करता है सारे कर्म प्रकृति करती है। प्रकृति क्या है अनात्मा है, अनात्मा छोड़ के दूसरी क्या चीज है क्या? तो कर्ता कौन हुआ अगर प्रकृति कर्म करती है तो कर्ता प्रकृति हुई। आत्मा क्या करता है आत्मा ही अकर्ता। अगर आत्मा अकर्ता है तो प्रकृति को कर्ता होना ही होगा नहीं। तो यहां पर भगवान ने साफ साफ लिख दिया प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति के गुण क्या हैं? बोले सत्व है रजस है तमस है, तीनों गुण काम कर रहे हैं। तो आप संसार में देखोगे कहीं पर कुछ सात्विक काम हो रहा है, कहीं राजसिक काम हो रहा है, कहीं तामसिक काम हो रहा है, होता है ऐसा होता है। एक ही लोकेलिटी के अंदर आपको मिल जाएगा, यहां थोड़ा दूर दूर पर है बस्ती, नहीं तो हमारे इंडिया में तो आपको मिल जाएगा। एक ही टेंपल वहां है, वहां सात्विक काम हो रहा है, अब बगल में कोई लोग खेल रहे हैं तो वो आपका, वहां तो रस्ते में क्रिकेट खेलते हैं। और तामसिक कोई पब वब भी यहां आसपास में सब जगह मिल जाता है, तामसिक काम भी होता है। तो कहीं सात्विक काम हो रहा है, कहीं राजसिक हो रहा है, कहीं तामसिक हो रहा है। तो सारे विश्व के अंदर ये जो काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? बोला प्रकृति कर रही है। अच्छा प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। अच्छा प्रकृति वर्ड का मतलब क्या हुआ? प्रधान किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं? ये देखो चारों सब वर्ड जो है पर्यायवाची है, सब पर्यायवाची वर्ड है। मगर अगर आप ठीक से अगर इसको समझना हो और अगर ठीक ठीक वर्ड यूज करने हो जगह पर, तो प्रकृति का मतलब होता है जब प्रकृति के सत्व रजस गुण साम्य अवस्था में होते हैं तो उसको हम प्रकृति कहते हैं। जब प्रकृति के अंदर में क्षोभ होता है, जब उसके गुण ऊपर नीचे होते हैं, तब हम उसको प्रधान कह देते हैं। जैसे हमारी सारी सृष्टि ये तमो प्रधान है। क्यों तमो प्रधान है? कि सात्विक अंश से कुछ बना, राजसिक अंश से कुछ बना, और बाकी जो बचा उसे तामसिक के मिश्रण से ये सारा संसार बना है, इसलिए इसको प्रधान कहते हैं। कब इसको माया कहते हैं? जब हम ईश्वर के साथ इसको जोड़ते हैं प्रकृति को, तब माया कहते हैं। कब अज्ञान कहते हैं उसको? जब हम जीव के साथ में उसी को जोड़ते हैं तो हम उसको अज्ञान कहते हैं। तो उसी प्रकृति को जब साम्य अवस्था होती है तो उसको हम, जब सत्व रजस गुण सब साम्य रहते हैं तब उसको हम प्रकृति कहते हैं। जब एक गुण की प्रधानता हो जाए तब उसी प्रकृति को हम प्रधान कहते हैं। जब ईश्वर के साथ में हम उसको जोड़ते हैं तब उसको हम माया कहते हैं। जब उसी प्रकृति को हम जीव के साथ जोड़ते हैं तो हम उसको अविद्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में क्या हुआ, प्रकृति में विकार होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, और जब वो चेंजेस होते हैं उससे क्या क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले जो है तन्मात्रा आई, तन्मात्रा मतलब सटल पंच महाभूत आए, सूक्ष्म पंच महाभूत आए पहले, उन सूक्ष्म पंच महाभूतों से सात्विक अंश से मन बना और ज्ञानेंद्रियां बनी। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सुन लो खाली, हैं। सूक्ष्म पंच महाभूत के राजसिक अंश से पांच प्राण बने और पांच कर्मेंद्रियां बनी। ठीक है, अब सत्व से जो बना पता लग गया आपको, रजस से क्या बना तन्मात्रा से या सूक्ष्म पंच महाभूत से पता लग गया, अब बाकी क्या बचा, तमोगुण। तमोगुण का पंचीकरण हुआ, मिश्रण हुआ, मिश्रण करके मेरा पिंड, ये ग्रॉस बॉडी और सारा ब्रह्मांड बना। ठीक है, आपको पता लगा। तो एक तो आपका कार्यकरण संघात, हमारी बॉडी बनी इसी से, और इसके साथ विषय भी बन गए। जितना वर्ल्ड जो ब्रह्मांड बना वो कैसे बना, पंच महाभूत से ही बना है, तो मेरा शरीर भी उससे बना और पंच महाभूत भी इसी से बने। विषय, ज्ञानेंद्रियों के विषय, वो भी पंच महाभूत से बने। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, ये आपको एक्सेप्ट करते हो ना, शंका है क्या? नहीं शंका, अच्छा किया। और ब्रह्मांड भी उसी से बना। तो प्रकृति से कार्यकरण हुआ और ये कार्यकरण कर्म करते हैं। देखो, प्रकृति से ये कार्यकरण, इसको कहते हैं कार्यकरण संघात। कार्य मतलब इफेक्ट, इस इफेक्ट के अंदर करण लगे हुए हैं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण बहिःकरण। करण याद है आपको, नाम सुना है करण का, अंतःकरण बहिःकरण। करण किसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो बहिःकरण कितने हैं,
मत बोलो, पूछो इनसे, बहिःकरण कितने हैं?
बहिःकरण 10 है। अम्मा लोग, आप कृपया करके घर में जाके एक बार फिर सुन के उसको नोट बनाया करो। नोट बनाने के बाद उसको पढ़ा करो, नहीं तो याद नहीं होगा। आपका दोष नहीं है, भगवान ने, भागवत ने कहा है कि कलयुग के अंदर मंद बुद्धि होती है, आपका कोई दोष नहीं है। तो हमको तो निकलना है ना, यहां से बाहर निकलना है, तो हमको सोच के याद रखना पड़ेगा ना। तो प्रकृति से यह कार्यकरण संघात बना, यह कार्यकरण संघात काम कर रहा है मगर चेतन की उपस्थिति में कर रहा है, यह याद रखना होगा। यह बल्ब जो है ना, यह भी एक संघात है। संघात मतलब असेंबली, क्या क्या है इसके अंदर में, एक फिलामेंट है, उसके बाद में उसके अंदर दो तारे आती हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, उसमें ग्लास है, ऊपर में होल्डर है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर फॉर इट इज कॉल्ड असेंबली। तो दिस ऑल्सो इज ए संघात, असेंबली। तो असेंबली जो है, जब चेतन के साथ में, इलेक्ट्रिक के साथ में जुड़ेगी तब यह प्रकाश देगा। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट के अंदर वो प्रकाश देता है, उसी तरह से ये कारण कार्यकरण संघात, ये हाथ कब उठेगा, जब चेतन रहेगा, जब चेतन नहीं रहेगा तब ये नहीं उठेगा। चेतन की उपस्थिति के अंदर ये कार्यकरण संघात काम करता है। क्लियर इतना? तो काम कौन करता है, चेतन करता है कि कार्यकरण संघात करता है? देखो हिंदी वर्ड है, सिंपल वर्ड, देह। देह काम कब करता है, चेतन जब है तब करता है। अब बताओ, चेतन काम करता है कि देह काम करता है? हाँ, चेतन की उपस्थिति में। अब इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में बल्ब प्रकाश देता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश दे सकती है? नहीं दे सकती। बल्ब निकाल लो, इलेक्ट्रिसिटी को बोलो प्रकाश दो, नहीं होगा। तो चेतन की उपस्थिति में कार्यकरण संघात या आपका देह काम करता है। तो दो चीज है, चेतन है और आपका देह है, काम कौन कर रहा है? काम देह कर रहा है। चेतन करता है? नहीं, चेतन काम नहीं करता। चेतन को हम लोगों ने बहुत पहले ही ठीक कर लिया है कि वो अकर्ता है, वो निकम्मा है, वो अकर्ता है, वो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता हो, मगर उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, बिना उसकी उपस्थिति के काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन से कर्म करता है दे? अब ये वर्ड आ गया, कौन से कर्म करता है? ये बोलते हैं लौकिक कर्म करता है और शास्त्रीय कर्म करता है। लौकिक और शास्त्रीय, लौकिक मतलब व्यवहार में आप लोग कर्म करते हो, जो एक दूसरे के घर जाते हो, आते हो, बातचीत करते हो, लौकिक कर्म है। और शास्त्रीय कर्म क्या है? बोले संध्या पूजा कर्मयोग, ये सब जो है शास्त्रीय कर्म है, शास्त्र के अंदर लिखा है पूजा करो। जब अगर आप पूजा करते हो, संध्या वंदन करते हो, तो ये शास्त्रीय कर्म हो गए। हम लोग आजकल शास्त्रीय कर्म तो भूल गए, लौकिक कर्म ही ज्यादा करते हैं, ऐसा है ना? तो आपने ठीक समझ लिया ना, काम कौन करता है? चेतन करता है कि देह करता है?
देह
करता है। अच्छा, अब हम उसको दूसरा वर्ड देते हैं, देह अनात्मा है और चेतन आत्मा है, काम कौन करता है? निश्चित हो गया तो एकदम, आत्मा नहीं करता है। मगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं, मैं करता हूं। हमने देख लिया अच्छी तरह से, काम कौन करता है? देह काम करता है। देह कौन है? अनात्मा है। देह कौन है? प्रकृति है। देह कौन है? माया है। देह कौन है? त्रिगुण है। काम कौन कर रहा है? हाँ? नो? चेतन की उपस्थिति के अंदर में अनात्मा या प्रकृति या त्रिगुण या माया, ये काम करते हैं। तो काम प्रकृति कर रही है, इसीलिए तो भगवान ने कहा ना कि प्रकृति क्रियमानानी गुणे कर्मानी सर्वसा, प्रकृति कर रही है। अब मैंने इतनी देर आपको समझाने की चेष्टा की कि कौन कर रहा है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट नहीं देता है। आप पॉजिटिव नेगेटिव लाके यहां रख दो और सब लाइट बंद कर दो, न आपको हीट मिलेगा न आपको लाइट मिलेगी। उसके साथ में एक कार्यकरण संघात लगाना होगा, ये एक संघात है, ये आपको गर्म हवा देगा, उसके अंदर वो लगा दो, बल्ब लगा दो, तो आपको प्रकाश देगा। तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश दे रहा है? नहीं, बल्ब प्रकाश दे रहा है। उसी तरह से चेतन की उपस्थिति के अंदर देह काम कर रहा है। तो कर्ता कौन हुआ, डूअर कौन हुआ?
देह।
एकदम ठीक। तो अच्छा, आगे बढ़े। मगर एक आदमी ऐसा भी है, वो क्या कहता है? मैं करता हूं। भगवान कहते हैं यू आर द पर्सन टू होम आई मस्ट गिव ए सर्टिफिकेट ऑफ द मूड। भगवान कहते हैं तुम मूड नहीं हो, विशेष रूप से मूड हो, मूर्ख हो तुम जो कहते हो मैं करता हूं। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि देखो, अविद्वान क्या करता है? अविद्वान जो भी कुछ करता है ना, अपने ऊपर सुपर इंपोज कर लेता है, अपने ऊपर सुपर इंपोज कर लेता है। आप जैसे कहते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, अरे मैं तो शुद्ध चैतन्य है। इतनी बार आपको बताया कि मैं जो शुद्ध है वो कुछ नहीं करता है, वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, आपकी आंख देख रही है, आपके कान सुन रहे हैं। मगर अविद्वान क्या कहता है? मैं देख रहा हूं, कहता है ना, आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई 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 करता रहता है। मगर आप तो केवल अध्यक्ष हो, आप नहीं काम करते हो, काम तो देह कर रहा है। और भगवान ने लिखा भी है, मैं अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम करती है, चर अचर सबके सब काम कर रहे हैं। तो ईगो क्या है? तो ईगो आत्मा या शुद्ध चैतन्य के साथ में अगर कोई वृत्ति लगा दें, या किसी देह को लगा दें, या मन को उसके साथ में जोड़ दें, तब वो अशुद्ध हो जाता है, तब वो ईगो आता है। और वो ईगो फिर आगे जाके अभिमान के अंदर, मद के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जब भी कोई चीज प्रकृति की जोड़ देते हैं आत्मा के साथ में, एक तो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा के साथ में मन क्या है? मन अनात्मा है, देह क्या है? अनात्मा है। उसको जब जोड़ दिया तब ये काम करने लगा, जब काम करने लगा फिर ये कहता मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो जो अनात्मा के काम है वो आत्मा के ऊपर आरोपित कर देता है। मैं मतलब क्या हुआ? शुद्ध आत्मा। शंकराचार्य जी कहते हैं, कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है। कार्य और करण, ये दिस इज कार्य, दिस इज इफेक्ट, ये बॉडी जो है इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रकृति के पांच महाभूतों से बना हुआ है। इसका कॉज क्या है, हेतु क्या है इसका? पंच महाभूत है, पंच महाभूत से शरीर बना। तो शरीर का कारण क्या है? पंच महाभूत। पंच महाभूत का इफेक्ट क्या है? देखो आपको थोड़ा सा कारण और कार्य के अंदर में अंग्रेजी बोलने से जल्दी समझ में आता है।
कॉज एंड इफेक्ट चल रहा
है। इसका कॉज क्या है? पांच महाभूत। पांच महाभूत का इफेक्ट क्या है? ये है, समझ में आया? उसको हिंदी में कैसे क्या कैसे कहेंगे? इस शरीर का कारण क्या है, हेतु क्या है, कॉज क्या है? पंच महाभूत। पंच महाभूत का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट का मतलब कार्य। तो कार्य ये हो गया। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, कार्य करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति। आप बोलते ये आत्मा है, जड़ वस्तु को अनात्मा को जब आप आत्मा कहते हो तब आपका अहंकार का प्रतीति होती है। तो भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। बोले वो जो है विमूढ़ आत्मा है, जो अपने आप को कर्ता मानता है वो कौन है? भगवान कहते हैं वो विशेष रूप से मूढ़ है। कर्ता कौन है? प्रकृति है। देखो भूल मत जाओ बार बार, दो तो चीज है, एक आत्मा और दूसरा अनात्मा, एक पुरुष है एक प्रकृति है। हमने प्रूव कर दिया कि काम कौन कर रहा है, बल्ब काम कर रहा है। बल्ब की जगह अब अपनी देह को रख दो, अब कौन काम कर रहा है? हाथ काम कर रहे हैं, पांव काम कर रहे हैं। अब अगर अब बोलो कि आत्मा कर रहा है तो गलत बात हुई ना। मगर एक व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं कर रहा हूं, वो व्यक्ति कौन है? विमूढ़ है। कहां बैठा है? हम सब वही है, हम सब कहते हैं हम करता हैं। देखो भगवान कहते हो आप लोग सब विशेष रूप से विमूढ़ हो। देखो कैसे, देखो अहंकार कैसा काम करता है। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को, कोई मान लो प्रेसिडेंट हो और उसको आप कह दो आप तो चपरासी हो, या किसी कमिश्नर को आप बोलो आप तो कांस्टेबल हो, कमिश्नर और पुलिस को आप बोल दो आप तो कांस्टेबल की तरह लगते हो, तो हर्ट हो जाएगा ना। देखो अभिमान है वो। अच्छा ये गलतफहमी हुई कैसे? अब ये प्रश्न आता है, गलतफहमी हुई कैसे? तो शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्या के कारण हुई। आप अपने आप को कर्ता क्यों मानते हो? कर्ता तो प्रकृति है, कर्ता तो अनात्मा है। आप कौन हो? आप आत्मा हो, आप ब्रह्मन हो, आप अपने आप को कर्ता क्यों मानते हो? तो आप अपने आप को कर्ता मानते हो, कैसे हुआ ये घटना, कैसे घटी? तो कहते हैं अविद्या के कारण घटी है ये। हम लोगों ने इसके अंदर आत्मबोध नहीं पढ़ा। आत्म चैतन्यम आश्रित देह इंद्र मनोधीय स्वकिया अर्थेशु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जना। आत्म चैतन्य के ऊपर में आश्रित है, देह इंद्रियां ये सब जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चेतना के ऊपर में, सेल्फ के ऊपर में डिपेंडेंट है। जब वो चेतना रहती है तब ये काम करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। तो विद्वान जो है ना, इस चीज को जानता है कि कर्ता कौन है। अविद्वान उसको नहीं मालूम है। ये शरीर पंचीकरण हो क्या है, बोले ये मेरे को मत समझाओ कि समझ में नहीं आता है। उसको नहीं समझ में आएगा अविद्वान को पंचीकरण क्या होता है, सत्व रजस तमस क्या है। बोला मैं काम करता हूं, कर्मफल मिलता है, बस मैं ठीक हूं, सुख से हूं, आई एम द डूअर। ठीक है, आप रहो वैसे ही। तो विद्वान को यह मालूम है कि मैं कर्ता नहीं हूं, प्रकृति कर्ता है। और अविद्वान अपने आप को कर्ता मानता है। तो हम विद्वान है कि अविद्वान है? एक ही आदमी ने बोला। हम लोग सब अविद्वान हैं। अच्छा, 28 नंबर।
तत्त्ववित्तु महाबाहो, तत्त्ववित्तु महाबाहो, गुणकर्म विभागयोः,
गुणकर्म विभागयोः,
गुणागुणेषु वर्तन्ते,
गुणागुणेषु वर्तन्ते,
इति मत्वा न सज्जते,
इति मत्वा न सज्जते,
तत्त्ववित्तु महाबाहो, गुणकर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते।
तत्त्ववित्तु मीन्स आगे जो हम किसी बात कर रहे थे, विमूढ़ आत्मा, उससे डिफरेंट। जब भी तू वर्ड आए तो आप समझ लेना कि आगे जो भगवान कह रहे थे उसका ठीक दूसरा कुछ कहने जा रहे हैं। तो ये तत्त्ववित्त जो है वो विमूढ़ आत्मा से डिफरेंट है। तत्त्ववित्त का मतलब जो तत्व को जानता है, जो ट्रुथ को जानता है, जो रियलिटी को जानता है, जो आत्मा को जानता है। तत्त्ववित्तु तो महाबाहो गुण कर्म विभाग, उसको क्या मालूम है? उसको गुण का बारे में पता है, गुण का भाग विभाग का पता है, और कर्म का विभाग का पता है। गुण का विभाग, कर्म का विभाग। गुण का विभाग क्या है? उसको मालूम है कि सत्व रजस तमो गुण से क्या बना। पहले पंच महाभूत तन मात्रा में आए, सूक्ष्म रूप में, उसके बाद में ग्रॉसिफाइड हुए, स्थूल हुए। तो उसको मालूम है कि सात्विक अंश से क्या क्या बना, राजसिक अंश से क्या बना, तामसिक अंश से क्या बना, तन्मात्रा से क्या बना और स्थूल से क्या बना। सात्विक तन्मात्रा से क्या बना? हा? आप लोग यहां हो, मैंने इसी क्लास में आपको बताया अभी।
माइंड एंड
यस, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन,
ज्ञान इंद्रिया
और मन, सात्विक अंश ऑफ पंच महाभूत से बने। राजसिक अंश ऑफ तन्मात्रा या सूक्ष्म पंच महाभूत से क्या बना?
कर्मेंद्रिया
बनी। और अभी बताया आपने, आधा घंटा पहले बताया है,
कर्मेंद्रिया एंड
प्राण। देखो प्राण बराबर चलते रहते हैं, कर्म हो रहा है कंटिन्यूअसली, एक्शन उसमें हो रहा है। कर्मेंद्रिया मतलब एक्शन, प्राण एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। बाकी तमस से ये शरीर बना। चलो ठीक है, तो तत्वविद को क्या मालूम है, उसको ये मालूम है गुण से क्या बने, सत्व रजस तमस से क्या क्या बना, ये उसको मालूम है, और जो बना उसका कर्म क्या है ये भी उसको पता है, मन क्या करता है उसको मालूम है, प्राण क्या करते हैं उसको मालूम है, आंख क्या करती है, कान क्या करते हैं, जीभ क्या करती है, त्वचा काम क्या करती है, उसका कर्म भी उसको मालूम है, इसलिए उसको तत्वविद कहते हैं। और यही नहीं, उसको यह भी मालूम है कि मैं प्रकृति से अलग हूं, जो तत्वविद है उसको यह मालूम है कि मैं अनात्मा से अलग आत्मा हूं, इस संघात के अंदर आत्मा अनात्मा दोनों हैं, मैं अनात्मा नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, यह उसको मालूम है। अब त्रिगुण, त्रिगुण से हमने देखा ये बॉडी बनी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, देह और
शरीर
बोलते हैं, और हमने एक आपको वर्ड अभी बताया कार्य करण संघात, संघात मीन्स असेंबली, कार्य मीन्स इफेक्ट, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, इसी इट इज एन असेंबलेज ऑफ इफेक्ट ऑफ पंच महाभूत एंड इंस्ट्रूमेंट, फाइव ज्ञानेंद्रिया फाइव कर्मेंद्रिया आर देयर, दस ये हो गई और चार अंतःकरण है, बहिकरण और अंतःकरण, 14 हो गए।
इनको पूछे चार अंतःकरण क्या है,
बड़ा मुश्किल, वाह वेरी गुड,
नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को तत्वबोध शुरू करना पड़ेगा।
अब वो कहते हैं कि गुना गुने सुवर्तन्ते, देखो दूसरी लाइन के अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, गुना गुने सुवर्तन्ते, तो गुना गुने से क्या हुआ, देखो गुना गुना से मतलब गुण से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ये शरीर बना, बन गया ना, गुनेसु, गुनेसु मतलब ये ब्रह्मांड, ये जितने भी विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट हैं, वो किससे बने, वो भी पंच महाभूत से बने, तो हर पंच महाभूत के अंदर सत्व रजस तमस है, और हर शरीर के अंदर भी सत्व रजस तमस है, ठीक है। तो आप अगर मैं घड़ी देख रहा हूं, ये घड़ी किससे बनी है, पंच महाभूत से है, कौन देख रहा है, आंख देख रही है, किससे बनी है, ये भी पंच महाभूत की बनी हुई है, तो आंख अगर घड़ी को देख रही है तो कौन किसको देख रहा है, गुना गुणेशु वर्तन्ते, ये भी गुण का बना हुआ है, त्रिगुण का बना हुआ है, और ये शरीर भी त्रिगुण का बना हुआ है। अब त्रिगुण, त्रिगुण में से त्रि कॉमन है, निकाल दो, अलजेब्रा जानते हो थोड़ा सा, दोनों में त्रिगुण जो है, त्रि जो है कॉमन है, उसको निकाल दो, अब क्या बचा, गुना गुणेशु वर्तन्ते, देखो कौन कार्य कर रहा है,
व्यवहार कर रहा है,
व्यवहार किसका किसका हो रहा है, प्रकृति का प्रकृति के साथ हो रहा है, ये देह भी प्रकृति है, प्रकृति मतलब त्रिगुण, देखो त्रिगुण से हम गुण में आ गए, प्रकृति प्रकृति के तीन गुण, तीन गुणों से उसके बाद में सत्व रजस तमस तन्मात्रा आई, उसके बाद में स्थूल पंच महाभूत आ गए, उससे शरीर बना, उससे सारी दुनिया बनी। अब हम इंटरेक्शन किससे कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए हम लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं, हैं? तो लक्ष्मी जी किस चीज की बनी हुई है, पंच महाभूत की, मैं किस चीज का बना हूं, कौन किससे व्यवहार कर रहा है, त्रिगुण पंच महाभूत से कर रहे हैं, ये किससे बना हुआ है, ये भी पंच महाभूत का बना हुआ है, ये मकान किसका बना हुआ है, पंच महाभूत का बना हुआ है, तो हम इसको व्यवहार कर रहे हैं, तो गुना गुणेशु वर्तन्ते, ये सारी दुनिया में चल रहा है, भगवान दिखा रहे हैं, देखो आया समझ में आपको, ये वर्तन कब होता है, चेतन की उपस्थिति में हो रहा है, चेतन नहीं रहे तो कलप्स कर जाएगा सारा, कुछ काम नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो कोई इंस्ट्रूमेंट यहां काम नहीं करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, इसलिए गुना गुणेशु वर्तन्ते। अगर सात्विक गुण है तो सात्विक थॉट आएंगे, सात्विक डिजायर आएगी, सात्विक कर्म होंगे, सात्विक उसका लाभ होगा। राजसिक है आपका अगर प्रधानता तो क्या हो गया, राजसिक कर्म होंगे, राजसिक डिजायर आएगी, राजसिक को रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से ये दुनिया चल रही है। इति मत्वा न सज्जते, ये सोचकर ज्ञानी जो है, तत्ववित्तु जो है, वो इससे अटैच नहीं होता है। उसको ये पता है कि अनात्म वस्तु जो है वो दुख देती है। अनात्म वस्तु क्यों दुख देती है? आत्मा दुख देता है कि अनात्मा दुख देता है?
अनात्मा।
क्यों दुख देता है अनात्मा?
अटैचमेंट,
अटैचमेंट के कारण। अच्छा देखो, जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं ना, सारी की सारी जो है उनमें विकार होता है। ये सारी की सारी वस्तुएं नाशवान है। जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं, मेरा शरीर, ये टेबल, ये घड़ी, ये मकान, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्र, ये सारे के सारे क्या हैं? अनात्मा हैं। तो इनके अंदर कंटिन्यूअसली विकार होता है, चेंजेज होती हैं, और जो चीज चेंज होने वाली है वो सब मरने वाली है। जो चीज मरेगी वो अल्टीमेटली मेरे को सुख देगी,
दुख देगी।
अरे वाह! तो ये सारी की सारी दुनिया जो भी दिखाई पड़ रहा है ना हमें, ये सारा का सारा नाशवान है। तो एक दिन हमको ये दुख दे के जाएगा, एक दिन दुख देगा हमको। इसलिए जो तत्ववित है, तत्ववित मतलब जो प्रकृति को जानता है, जो पुरुष को जानता है, जो अनात्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है, वो क्या करता है? अनात्मा से जुड़ता नहीं है, अनासक्त है, छोड़ता नहीं, उसको छोड़ नहीं देगा। ये अनात्मा मैं इसको फेंक नहीं दूंगा, ये अनात्मा फेंक दो इसको, ऐसा नहीं, पहनूंगा मैं इसको, काम में लगाऊंगा, मगर इसके साथ में अटैच। अब मेरे को बताओ, आपका घर क्या है? अनात्मा क्या आत्मा?
अनात्मा।
आपकी गाड़ी क्या है? आपका शरीर क्या है? आपके बच्चे क्या है? ना मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। आपका वेल्थ क्या है? पैसे क्या हैं? आपकी नौकरी, आपकी पोजीशन, सबकी सब अनात्मा है। दुख कहां से आता है? अनात्मा से आता है। फिर भी हम अनात्मा से जुड़े रहते हैं, अनात्मा को छोड़ते नहीं हैं। शरीर मेरे को दुख देता है, हम उससे अलग नहीं होते हैं। बच्चे हमारे, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एम्प्लॉयर, ये सब दुख देते हैं। हमारा वेल्थ 401 नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, होता है ना, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दुखी होते हैं। अच्छा ऊपर क्या सुखी होते हैं? कैलकुलेशन कर लिया, अरे $100,000 बढ़ गया वैल्यू, आया नहीं पॉकेट में कुछ भी, अभी बढ़ गया, हम बहुत आनंदित होते हैं। तो तत्ववित जो है इनसे जुड़ता नहीं है। और जो तत्ववित नहीं है उनका क्या हाल है, तो नेक्स्ट वर्स में भगवान बताते हैं उनका क्या हाल है।
प्रकृते गुण सम्मूढ़ा
सजन्ते गुण कर्मसु
तान कृष्ण विदो मंदान
तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत
विचालयेत प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मन्दान कृष्ण भिन्न विचालयते।
तो जगत में जो मूड हैं वो कैसे हैं, तो ये हमारी परिभाषा है, क्या है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्म सु। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा मतलब जो अविद्वान है, अज्ञानी है, अतत्वित है, जिनको तत्व के बारे में नहीं पता है, उनका क्या हाल है, कहते हैं कि ये लोग जो है सज्जनते गुण कर्म सु। सज्जनते अटैच्ड किसके साथ, गुण के साथ, गुण के साथ मतलब सत्वरजस्तम, सत्वरजस्तम माने प्रकृति के साथ, अनात्मा के साथ में, या उनके जो चीजें इंस्ट्रूमेंट बनी है उनके जो कर्म होते हैं उनसे जुड़ जाते हैं, या कर्म फल से जुड़ जाते हैं। देखो कर्म भी, कर्म फल, करण, ये सारी की सारी चीजें अनात्मा हैं। तो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, जिनको प्रकृति के गुण के बारे में पता नहीं है, जो मोहित हैं, वो क्या करते हैं, प्रकृति के साथ में जुड़ गए, कर्म के साथ जुड़ गए, कर्म फल के साथ जुड़ गए। सज्जनते गुण कर्म सु। मगर तत्वविद का क्या काम है, जिसको ज्ञान है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उसको क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं तान अकृष्णविद मंदान कृष्णविद न विचालेत। तान अकृष्णविद, अकृष्णविद जो अविद्वान है, कृष्णविद, कृष्ण मतलब फुल कंप्लीट परफेक्ट, अकृष्णविद जिसको ज्ञान नहीं है, वो कौन है, मंदान है, मोहित हैं, उसको कहते हैं ट्यूबलाइट, हम लोग कहते हैं ना कई बार लोगों को, ये तो ट्यूबलाइट है, इसको टाइम लगता है, डिम लाइट है वो, मंदान। भगवान भी देखो उस टाइम में भी ट्यूबलाइट रहा होगा पता, मंदान। कृष्ण भी न विचालये, बोलो जो ज्ञानी है उनको विचलित ना कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करना। आगे भी उन्होंने ऐसा कहा, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को एकदम विचलित नहीं करते, उसको ऐसा नहीं कहते कि तुम मूर्ख है, तुम क्या कर रहा है, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, उसको धीरे 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 उसको मार्ग का प्रदर्शन करना चाहिए, उसको झटका ना दे, शॉक ट्रीटमेंट नहीं दे दे, क्या कर रहे हो सारी जिंदगी बीत गई, ऐसा किया तुमने, गए तुम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आस्ते 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 उसको रास्ते के ऊपर में धीरे 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 उसको बताया कि हाँ अच्छा ये कर रहे हो, थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो, आस्ते 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 करके उसको लाइन पर लाए। तो किसी तरीके से भी जो है ज्ञानी उनको डिस्टर्ब ना करे, मगर उनको लोक संग्रह करना है, उनको रास्ता दिखाना है, तो कैसे रास्ता दिखाना होगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा तैसे तैसे उसको फिर लाते जाओ, काम में लगेगा। अब इसके बाद में तीसवें नंबर 30th वर्ष के अंदर में भगवान जो है कर्म योग का पूरा एक श्लोक के अंदर में बताने जा रहे हैं। ये तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक प्राण श्लोक कहते हैं इसको। तो इसको हम डिटेल में अगली कक्षा के अंदर देखेंगे, और उस दिन केवल 30वां नंबर श्लोक ही होगा और कुछ नहीं होगा, एक श्लोक होगा। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।